ओम शांति। माताओं की योग तपस्या बच्ची ने क्या कर दिया, हाँ, चारों तरफ शीतल फुहार कर दी। बहुत अच्छा, सारा मौसम भी देखिए बदल गया है। और वैसे भी बाबा कहते हैं कि हमारे चारों विषयों में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है योग है। और अंत समय में यही योग तपस्या हमें काम में आएगी। हमारा अंतिम पेपर भी हमारी स्थिति का ही होगा। और आज इस योग के विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे मध्यस्थ हैं हमारी आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी। आपने कल सुना और आज अभी वो इस विषय पर स्पष्ट करेंगे, योग की गहन अनुभूति। आदरणीय चक्रधारी दीदी,
ओम शांति। जिन भी बहनों को जहां भी जगह मिलती है कृपया वो बैठ जाएं, पीछे आकर आगे आगे आने की चेष्टा ना करें तो अच्छा है। आज पीछे जगह काफी बड़ी है और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइएगा। तो आज प्रातः जब मैं देख रही थी कि घुटन है, गर्मी है, फिर भी आप सभी अपनी आदरणीय माताएं जो विशेष रूप से ज्ञान बल, योग बल और दिव्य गुणों की शक्तियों को एकत्रित करने के लिए अपने घर परिवार से, कार्य व्यवहार से फारिग होकर यहाँ पहुंचे और वह उस चीज का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी सभी दच्छित होकर बैठे थे और मुझे मन में यही आ रहा था कि आपकी लग्न, आपकी तन्मयता को देखकर अवश्य बाबा वतन से कुछ नए अनुभव आपको कराना ही चाहेगा, क्योंकि आप हम सभी बाबा के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं और जिसका निमंत्रण होता है उसे जरूर ध्यान रहता है कि आमंत्रित सभी बच्चे बाप के घर से संतुष्ट होकर जाएं। तो मुझे जो विषय आज दिया गया, योग की गहराई, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को एक ये भी टाइटल दिया है कि तुम रूहानी मिलिट्री हो। रूहानी मिलिट्री के पास रूहानी शस्त्र हैं और रूहानी शक्ति है। जब वो रूहानी शस्त्रों से लैस होते हैं और रूहानी शक्तियों से संपन्न होते हैं तभी इस मायावी नगरी में कई प्रकार के नकारात्मक बातें, नकारात्मक परिस्थितियों का मुकाबला कर हम विजेता बन सकते हैं। क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान इतना सुंदर दिया है, कहीं ज्ञान को बाबा ने शस्त्र के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहा, कहीं ज्ञान को संजीवनी बूटी के रूप में दिया कि अगर कोई आत्मा मूर्छित हो गई है तो ज्ञान की संजीवनी बूटी से वो सुरजीत हो सकती है। कहीं बाबा ने ज्ञान को अमृत कहा, जिस अमृत के पान करने से हम अमर पद को प्राप्त करते हैं, चाहे वो कितना भी पान करे वो आत्मा अमर पद को प्राप्त अवश्य करेगा। विभिन्न टाइटल्स देकर बाबा ने ज्ञान को स्पष्ट किया। तो मैं इस बात को सोच रही थी कि जब बाबा ने हमको रूहानी मिलिट्री कहा, तो मिलिट्री में बहुत बड़ी बात है। मिलिट्री के हर आत्मा, हर सिपाही तक को मिलिट्री की लॉ एंड ऑर्डर मानने होते। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का सही रूप से पालन नहीं करता है, तो यहां तक कि उन्हें सस्पेंड किया जाता है, और कोई ज्यादा अवज्ञा करता है तो उसे शूट कर दिया जाता है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मिलिट्री के डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, वफादारी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं से स्वयं पूछें कि जब हम रूहानी मिलिट्री में हैं, तो रूहानी मिलिट्री के क्या लॉज हैं और क्या ऑर्डर हैं? बहुत मोटे रूप से जो बाबा ने हमको लॉ एंड ऑर्डर दिया, जिससे हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं, रूहानी शक्तियों से स्वयं को शक्तिशाली बनाए रख सकते हैं, योग युक्त बनाए, विकर्मों से बच किए हुए विकर्मों को भस्म कर सकते हैं, इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आप रूहानी सेना के लिए लॉ है कि देह सहित, देह की पुरानी दुनिया और सर्व संबंधों से बुद्धि का योग हटा लो। ये लॉ है इस रूहानी मिलिट्री में मिलिट्री के योद्धा बनने वालों के लिए, और ऑर्डर है कि सर्व संबंध उस सर्व शक्तिवान से जोड़ो। लेकिन कौन सर्व शक्तिवान? जो जो है, जैसा है और जहां है, उसे जानकर उससे सर्व संबंध जोड़ो। अगर हम बैठे हैं लेकिन हम इस लॉ को पूर्ण पालन नहीं कर पा रहे, ना देह से बुद्धि को हटा पा रहे हैं, ना देह की दुनिया से बुद्धि को हटा रहे हैं, ना देह के संबंधों से मन बुद्धि को दूर कर रहे हैं, और ना ही बाबा के साथ सर्व संबंधों को जोड़कर जो बाबा जैसा जहां है उससे नाता जोड़ रहे हैं, तो हम ईश्वरीय शक्तियों से वंचित हो जाते हैं। हमें कोई सस्पेंड नहीं करता, शूट नहीं करता, लेकिन हम स्वयं ही अपनी स्थिति से नीचे उतर आते हैं। यहां तक कि कई आत्माएं बाबा का हाथ छोड़कर चली भी जाती हैं। इसलिए सबसे पहली बात ये जरूर ख्याल रखने की है कि हम बाबा के बच्चे रूहानी सेना हैं। विकारों के दुश्मन पर जीत प्राप्त कर इस विश्व को विकार रहित बनाने की हमने जिम्मेवारी ली है, तो हमको अपने रूहानी मार्शल की ये आज्ञा कभी भी अवज्ञा के रूप में ना लाने दें। अब इस बात को देखते हुए मैं बाबा के वचन याद कर रही हूं बाबा हमको हमेशा कहते हैं, बच्चे योग अक्षर कह के भारी ना हो जाओ और किसी को भारी ना कर दो, नहीं तो वो आपके पास बार बार आकर कहेंगे कि हमें योग सिखाओ। आपने सब बातें सिखा दी लेकिन अभी भी वो पूछते हैं आकर, योग कब सिखाएंगे। तो बाबा ने शब्द हमको दिया हुआ है जो आप सभी जानते हैं कि बाबा ने योग शब्द कट कर याद शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा है। क्यों बाबा याद कहता है? क्योंकि हम स्वयं को वास्तव में भूल गए थे। ये पांच तत्वों के बने हुए शरीर को ही हम शरीर समझ चुके थे और इस शरीर के भान में इतने परिपक्व हो चुके थे कि हमने जो अपना इष्ट देखा वो भी देहधारी ही देखा। तभी कहते हैं कि मनुष्य भगवान को जैसा स्वयं है वैसा ही उसको भी बना लेता है। तो देह अभिमान में आने के कारण हमारा इष्ट भी देहधारी ही बना रहा। और दूसरा, इस देह के जगत में चारों तरफ देहधारियों से घिरे हुए हैं, जिधर देखते हैं देहें दिखाई देती हैं। इसलिए ये देहिक याद इतनी परिपक्व हो गई कि देही को, आत्मा को अपने स्वरूप की विस्मृति आ गई। तब प्यारे बाबा ने इस धरा पर साकार होकर हम बच्चों को हमारी पहचान दी। बच्चे, तुम्हें याद है तुम कौन हो? और इतना प्रश्न कर स्वयं ही हमको उत्तर दिया, ये देह तेरी है, तू देह नहीं है। तो इस देह को धारण करने वाली चेतन अविनाशी अजर अमर सत्ता आत्मा है। बच्चे, इसे याद रख, भूल न जा। लेकिन इतना कहने पर भी हम कई बार विस्मित हो जाते हैं। तो बाबा हमको कहता है, तू आत्मा है, देह जब समझा तो देह के संबंधों को मेरे संबंधी हैं ऐसा समझकर देह संबंधों से तेरी रग जुटी रही और उन संबंधों को निभाने की तू कोशिश करता रहा। मैं तुझे आकर बताता हूं कि तू देह नहीं, तू आत्मा है और मैं तुझ आत्मा का पिता परम आत्मा हूं। बच्चे, याद रहेगा ना? हम कहते हैं, हाँ ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये क्या भूलने की बात है, ये तो याद ही रहेगा कि मैं आत्मा हूं और बाबा का बच्चा हूं। लेकिन अपने आप से पूछकर हम देखें, सचमुच ये याद निरंतर रहती है या बार बार विस्मृति होती है? जबकि अति सहज है, सत्यता है, रियलिटी है, वास्तविकता है, लेकिन हम वास्तविकता से कोसों दूर निकल चुके हैं बहुत समय से। इसलिए देह के भान की स्मृति इतनी परिपक्व हो चुकी है कि आत्म विस्मृति हो जाती, जबकि है अति सहज। इसलिए बाबा कहते, याद कहो, ये कह दो कि मुझे मेरा स्वरूप याद भूल गया तो थोड़ा संकोच होगा, मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मेरा बाबा ही भूल गया, क्या बोल रहा हूं। योग नहीं लगता, योग कैसे लगाएं, ये कहना एक बहुत बड़ा शब्द बना दिया। लेकिन उसको छोटे रूप से देखो, याद करना है मैं कौन और मैं किसका। कौन है जिसको ये याद नहीं है, लेकिन याद होने के बावजूद भी ये याद परिपक्व क्यों नहीं रहती? और इसका मैंने आपको पहले ही कारण सुनाया कि हम स्वयं भी सारा दिन देह में और देहधारियों के इस जगत में जब चारों तरफ देहों को देखते ही रहेंगे तो देही स्थिति में स्थित होने के लिए विशेष अटेंशन देना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय की पुरानी स्मृति देह की होने के कारण ये सत्यता की पहचान विस्मृत हो जाती है। इसलिए बाबा ने आज भी कहा और दो दिन पूर्व भी कहा, बच्चे संग का परहेज करना। और गायन भी है, संग तारेगा कुसंग डुबो देगा। अब हम बुरे संग दुनिया वालों से तो बच जाएं, लेकिन ये देह है, ये देह भी तो पांचों तत्वों का बना हुआ पुतला ही तो है, जो विकारों की मैल से ही तो बना है। इसके संग में सारा दिन हम रहते हैं। और कुसंग उसे कहा जाता है जो झूठा है। और ये देह तो नाशवान है, और नाशवान चीज को झूठी कहा जाता है। अब झूठ के संग में रहकर हम अपने जीवन को सत्यता की राह पर चला नहीं पाते। तो गायन है, सत का संग तारेगा और कुसंग डुबो देगा। तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि तू सत अजर अमर अविनाशी आत्मा है, और मेरे संग में रह, क्योंकि मैं ही एक तुझ आत्मा का, सर्वशक्तियों का दाता, परम पिता, परम आत्मा हूं। लेकिन तुझे इतना सब जान लेने पर भी याद नहीं रहती, कारण क्या है? सहज है मैं आत्मा हूं, और सहज है कि देह मेरे कर्म करने के कर्म इंद्रियां हैं। ये बाबा ने मुझे देह की डेफिनेशन, ये परिभाषा समझा दी, और यह भी बता दिया कि देह से संबंध रखने वाली सब चीजें नाशवान है। तुझ अनश्वर का संबंध एक अनश्वर के साथ अविनाशी है, और वो मैं ज्योति स्वरूप बाबा हूं। और हम भी ये चाहते हैं कि बस बाप के साथ ऐसा संबंध जुट जाए, इतनी लगन लग जाए, इतना आनंद आ जाए, जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि विकर्मों से भी बच जाओ और किए हुए विकर्म भी दग्ध हो जाएं, बच्चे सिवाय मेरी याद के दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अब हमको ये सब कुछ मालूम है, ये भी हमें मालूम है कि हमारे में जो दुर्गुण आ जाते हैं या अवगुण अपना हमला कर देते हैं, या पुराने संस्कारों के प्रभाव से हम प्रभावित हो जाते हैं, इसका मूल कारण क्या है? कि हमारे पास योग का बल नहीं है, उस ईश्वरीय शक्ति की कमी होने के कारण हम दुर्गुणों के और दुर्जन के वश होकर सत्यता के अनुभव से दूर हो जाते हैं। और आत्मा कई बार छटपटाती है, मुझे ईश्वरीय अनुभव बताओ कैसे हो जाए। मैं देखती हूँ कई बार कई जगहों पर जाते हैं, कई कहते हैं दीदी जी आप हमको योग के गहरे अनुभव करा दो। और सचमुच उस समय इतना अंदर से आता है कि आत्मा कितनी इच्छुक है प्रभु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत शक्तियां हैं। इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए कि किसी शक्ति को सेवन कराने वाले को भी पहले थोड़ी शक्ति चाहिए। मैं उसे घी का कटोरा तो पिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो इतनी कमजोर सर शारीरिक रूप से है, वो मेरे घी का कटोरा पचा नहीं सकता। मैं किसी पहलवान से अपने जीवन को मुकाबला कर उसकी पहलवानी के सारे आर्ट लेना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे में भी थोड़ी पहलवानी का लक्षण या शक्ति तो चाहिए, तब तो मैं ले सकूंगी। शक्ति को लेने वाले के पास भी शक्ति होनी चाहिए, तभी वह शक्ति को ले सकता है। अब हम ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन उससे पूर्व अपने आप से हम ये पूछें कि ईश्वर की शक्तियां लेने के लिए मेरे पास कुछ शक्तियां का संचय, कुछ शक्तियों का स्टॉक है। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि बाबा से योग का बल अर्थात शक्ति लेने के लिए हम सब में पहले चार प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता है, और जितनी जितनी ये शक्ति ये बल बढ़ता चला जाएगा उतना उतना ईश्वरीय सामीप्य और बाबा की शक्तियों का आप अनुभव करते जाओगे। और ऐसा लगेगा कि मैं दाता की बहुत समीप आत्मा होती जा रही हूं। अब कौन सी चार शक्तियों की आवश्यकता है जिससे हम सर्वशक्तिवान की शक्तियों को ले सकते हैं? पहली शक्ति जो हमें स्वयं में बढ़ाने की जरूरत है वो है इच्छा शक्ति। मैं स्पष्ट पीछे करती हूं, इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल शक्ति चाहिए। और दूसरी शक्ति जिसके आधार से मैं ईश्वरीय शक्ति ले सकती हूं वो है कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और तीसरी शक्ति है संतुष्टता की शक्ति, और चौथी शक्ति है सहन करने की शक्ति। जितनी जितनी हम में ये चार शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी उतना उतना सर्वशक्तिवान की शक्तियां आप अपने जीवन में अनुभव करते चले जाओगे। जितनी शक्ति है उतना अनुभव करते हो, लेकिन जो अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव हो नहीं पाता क्योंकि उतनी शक्ति है नहीं। अब मान लीजिए प्रथम शक्ति मैंने बताया इच्छा शक्ति, अपने से पूछो मेरी इतना इच्छा प्रबल है कि बस सर्वशक्तिवान की शक्ति का मैं अपने जीवन में अनुभव कर लूं। जबकि बाबा हमको कहते हैं बच्चे केवल पुरुषोत्तम संगम युग है, जब ईश्वरीय शक्तियों का स्टॉक अपने में धारण कर जन्म जन्म के लिए अपना परम सौभाग्य बना सकते हो और अनेकों को ऐसे परम सौभाग्य बनाने के लिए तुम बच्चे योग्य बन सकते हो। लेकिन इतनी इच्छा शक्ति है मेरे में? कहते इच्छा तो मेरे में बहुत है, लेकिन इच्छा का मतलब है अन्य सब इच्छाओं से मैं फारिग हो चुकी हूं। ये इच्छा तो मेरे पास है, लेकिन जरा अपने आप से पूछो कि इस देह के जगत में रहते हुए कुछ देह की इच्छाएं, देह के संबंधों से कुछ इच्छाएं देह की प्राप्तियां या देह के पदार्थों की इच्छाएं, क्या वो मेरी इच्छाएं सब खत्म हो चुकी हैं? मेरी एक इच्छा प्रबल चाहिए। कभी इच्छा है कन रस की, कभी नेत्र रस की इच्छा है, कभी जीवा रस की इच्छाएं हैं। अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन एक रस ऐसा है जो सभी रसों का राजा है, और वो रस है आनंद रस, जो संसार के किसी प्राणी और किसी पदार्थ के प्राप्त होने पर प्राप्त नहीं हो सकता। यह आनंद रस केवल मात्र एक प्यारे बाबा से ही प्राप्त होगा, और आत्मा उस रस की वास्तव में व्याकुल है। परंतु उस रस को पाने के लिए वो अनेक रसों में चली जाती है। जरा कचोर कर अपने को देखो, ढूंढ ढूंढ के देखो, मेरे में वो इच्छा है या नहीं है। कहते इच्छा तो नहीं है, बस ये है कि बच्चे लायक हो जाएं, जीते जी हम भी कुछ कर देखें। लेकिन जब बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं तो थोड़ा मन जरा से बेचैन होता है, फिर समझते हैं कोई बात नहीं। आपका जो आसन है, जिस पर स्थिर होकर आपको योग युक्त होना है, अगर आसन ही आपका स्थिर नहीं, इतना पक्का नहीं, तो आप योग कैसे लगा सकते हो, जरा ये तो बताओ। छोटी छोटी इच्छाएं हमारी स्थिति को हिला देती हैं, और इच्छा का मतलब एकमात्र इच्छा, जिसे पाना था उसे पा लिया, अब उसका ही अनुभव पाना है, और कुछ इच्छा शेष नहीं रही। जो बाबा हमको रोज कहता है, बच्चे ये दुनिया कब्रिस्तान है। हम वाणी का पॉइंट नोट कर देते हैं, दुनिया कब्रिस्तान है। सचमुच मैंने मन से ये समझ लिया कि दुनिया कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में कब्रें ही तो होती हैं, और कब्रों से तो प्रीत और प्यार नहीं होता। इस कब्रिस्तान में रहते हुए मुझे इन सब कब्रों में रहने वालों से कितनी प्रीत और कितना प्यार है, क्योंकि शरीर कब्र ही तो है, जड़ है ना। कब्र में वास करने वाली चेतन आत्मा है, लेकिन मेरा उनसे ममता मोह, उनसे कुछ इच्छाएं, कुछ करने के बाद रिटर्न पाने की तमन्नाएं क्या मेरे पास नहीं है? जब मेरे पास एक इच्छा हो, एक इच्छा, वो प्रबल इच्छा, जो प्रभु तुमने मुझे अपनी पहचान दे दी, आज तेरा अनुभव मुझे करके ही रहना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जाने वाले संसार में जो कुछ अब है, जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है, सब नाशवान है। ये सत्य प्यारे बाबा आपने जो मुझे बता दिया, मैंने समझ लिया, इस सत्य असत्य संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप देखो, सूर्य की किरणें जब कॉन्वेक्स लेंस पर एकाग्र होकर पड़ती हैं, तभी तो नीचे रखा हुआ कागज जलकर भस्म हो जाता है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को यही तो कहते हैं, लगन की अगन चाहिए। ऐसी ठंडी ठंडी लगन नहीं चाहिए, ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए, ये ही चाहिए, ये भी नहीं, ये ही चाहिए। और सचमुच अगर ये इच्छा इतनी प्रबल हो जाए, इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल बन जाए, हमारी मनोस्थिति कोई खींच नहीं सकता, आज हम याद में बैठते हैं और कहते हैं आज योग अच्छा नहीं लगा, जरा पूछो तो सही मन कहां गया। मन को खींचने वाली संसार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। अगर ये तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं ना हो तो मन कहां जाएगा? उसको कोई दूसरा स्थान ही नहीं जहां वो जाए, और जब स्थान नहीं तो वो जाएगा उसी के पास। सागर के पंछी का बताते हैं कि जहाज पर बैठ जाता है, उड़ता है इधर उधर लेकिन कहीं सहारा नहीं, फिर आकर जहाज पर बैठ जाता है। हम तो कई सहारे पकड़ लेते हैं। इनसे हमको ये इच्छा है, इनसे हमको ये इच्छा है, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपको मालूम है मन में कुछ होता तो है, कचोट होता है मन। इच्छा की पूर्ति ना होने से कुछ ना कुछ रूप से कांटा सा चुभता जरूर है, और वो कांटे की चुभन आपका अटेंशन, आपका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करती है, अपनी तरफ लगाती है, बाबा से नहीं लगने देती है। और जब बाबा से वो ध्यान ही नहीं लगा हुआ और आप कहो जी बाबा की उन शक्तियों का मैं आत्मा अनुभव कर लूं, कैसे अनुभव कर सकेंगे? अनुभव करने के लिए तो सब तरफ से ध्यान हटाकर उस एक में ध्यान लगा हुआ होना चाहिए। हमें तो बहुत सी इच्छाएं हैं, कहते शरीर में है इच्छाएं तो होंगी, तो बाबा कहते फिर पहले इन्हीं की इच्छाएं पूरी कर लूं। मेरा तो आदेश है इच्छा मात्रम अविद्या, तुझे एक इच्छा हो जाए ईश्वर के अनुभूति की, तेरी जो इच्छाएं हैं उस इच्छा में सारी इच्छाओं की पूर्ति समाई हुई है, तुझे अपूर्ण नहीं रखूंगा, तुझे भरपूर करूंगा, अनुभव कराऊंगा, लेकिन तू एक मेरे साथ अपना नाता तो जो, तो किसी से अच्छा करता है तो उनसे अच्छे की इच्छा रखता है। मान लीजिए मेरी कोई इच्छा है, अगर पूरी हो जाती है तो कई बार अहंकार आता है कि भी मैं जो भी इच्छा करती हूं भगवान मेरी पूरी कर देता है, और अगर कोई इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध आता है, और अगर कोई मेरी इच्छा के बीच में दखलंदाजी करे, इंटरफेयर करे, तो मेरे को उसके लिए घृणा या नफरत आती। तो जब मेरे मनोस्थिति में कहीं अहंकार आता है, कहीं नफरत आती है, कहीं झुकाव है, कहीं लगाव है, तो मेरा मन बाबा से कैसे लगा रहेगा? हम कई बार देखते हैं जब जेल सेवा में जाते हैं तो समय कई एक माताओं की जेल में मुझे एक बार जाने का मौका मिला, तो जब माताएं अपने अनुभव सुना रही थी तो यही सुना रही थी, इस इच्छा ने हमको पागल बना दिया, उस पागलपन में हमने क्रोध किया और आज पूरे जीवन के लिए हम इस जेल में बैठे हैं। इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को मार देती, बहुत इच्छाएं। मैंने सबसे अच्छा किया, कम से कम इन्हें मेरे से तो अच्छा करना चाहिए। बाबा कहते हैं तो सतयुग में नहीं बैठा हुआ, कलयुग के अंतिम चरण से चल रहा है। तुमने अच्छा किया सब तेरे से अच्छा करें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम जन्म है, जन्म जन्म के किए कर्म बनाए बंधन, हिसाब किताब यही चुकतू करने हैं। अगर बच्चे चुकतू नहीं करेगा तो भविष्य पद में कमी आ जाएगी, सजा खानी पड़ेगी। इसलिए इन बातों को ज्यादा सोचकर अपनी मनोस्थिति को परेशान न कर, ये छोटी छोटी इच्छाओं को न रख, जो गायन है गीत जो हमारा बना हुआ है कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। जो पुरुषार्थ करना है वो करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन सत्य पुरुषार्थ करने के पश्चात फल की इच्छा रखना हमारा फर्ज नहीं बनता, क्योंकि फल हमें नहीं मालूम कि पूर्व के किए हुए कर्मों में वो हमारा किया हुआ खाता पूर्व का कर्जे में ये चीज चुकत हो जाएगी या मुझे मेरे किए कर्म का फल मेरे हाथ में आ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं तू इन इच्छाओं को मेरे अर्पित कर दे और तू अपनी आसन अपनी स्थिति का सिंहासन ठीक बना के रख, लगा मेरे से योग, देख तेरा योग लगता है कि नहीं। ये कह देते हैं योग नहीं लगता, लगाने की कोशिश करते योग नहीं लगता, योग कहां से लगेगा जब हमारी स्थिति का आसन ही ठीक नहीं। एक इच्छा हो बस, एक इच्छा से सर्व इच्छाएं साफ हो सकती हैं, और एक इच्छा है प्रभु आनंद प्राप्त कर लेना है। पूरे कल्प में ये प्रभु आनंद की प्राप्ति कहीं से किसी पदार्थ और प्राणी से नहीं हो सकती सिवाय एक बाबा के और संगम के युग के। इतनी ऊंची प्राप्ति है। अब मैं थोड़े थोड़े में इसको पूरा करती जाऊंगी। अब दूसरी बात मैंने ये सुनाई कि इच्छा के साथ कल्पना शक्ति भी है, लेकिन पीछे उसको मैं लेती हूं, दूसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति और संतुष्टता की शक्ति। प्रथम है संतुष्टता की शक्ति। अपने आप से पूछें, मैं संतुष्ट हूं? अगर संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ पाने की तमन्नाएं हैं, अतृप्तियां हैं, तो आपकी एक इच्छा कि प्रभु अनुभव हो जाए वो एक इच्छा तो नहीं है ना, वो तो अनेक इच्छाओं में एक इच्छा वो भी है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं एक ही इच्छा हो कि मुझे प्रभु अनुभव करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ईश्वरी अनुभव करना ही है। जिसका एक बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा इतनी प्रबल थी कि कोई हॉकी मैच हो, क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, वो मैच मैं मिस नहीं कर सकता, मुझे वो मैच देखने ही देखने। गरीब है लेकिन पैसा हाथ में नहीं, टिकट ले नहीं सकता, इच्छा इतनी प्रबल है कि देखना ही है। और उसने अपने अनुभव, उसका किसी मैगजीन में मैंने अचानक पढ़ा, बड़ा अच्छा अनुभव था, उसने कितने मैच कैसे देखे, कहा कोई मैच मैंने मिस नहीं होने दिया और बिना टिकट के देखे, और बहुत अच्छा वो सुना रहा था कि बस एक तमन्ना थी मुझे देखना ही है, इतनी प्रबल इच्छा है। मैं कहीं और काम करूं, कहीं धन कमाऊं, कहीं ये करूं, किसी से चोरी करूं, दगा करूं, खींचूं, ये कुछ नहीं, ताकि मैं टिकट ले सकूं, कुछ बातें नहीं, केवल ये है कि मुझे मैच देखना है बस। तो कहा एक बार मैंने एक बड़ा सा टोकरा हाथ में लिया और झाड़ू पकड़ा, और मैंने जिस समय उसका शुरुआत होने से थोड़ा पहले मैंने लोगों को पीछे हट जाओ जल्दी, क्योंकि मैं सफाई वाला हूं, मुझे लास्ट टच देना है सफाई का। टोकरा लिया, झाड़ू लिया, पीछे हटो सब करते करते झाड़ू लगाता लगाता धीरे से झाड़ू रखा नीचे और टोकरा रखा पीछे, जा कुर्सी पर विराजमान हो गया जबकि लोग आने शुरू हो रहे थे, मैं सबसे पहले बैठ गया। जमादार बनना भी मंजूर है लेकिन मैच जरूर देखना है। ऐसे उसके अनुभव थे कई। एक अनुभव लिखा उसने कि एक जगह पर पहले जा नहीं पाया, कोई तरीका नहीं मिला, तो एक बार बीच में जब वो लंच होता है, रिसर्च टाइम आता है, उसके बीच में थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो उसके बीच में मैं थोड़ा सा मौका देख करके एक मूंगफली लेने बनाने वाला जल्दी जल्दी वो पॉच से बनाए हुए ऐसे ही मैंने, कोई मूंगफली उसमें थी भी नहीं, खाली वो ऐसे ही बने हुए जो चना जोर गर्म वाला है, पकड़े हुए हाथ मूंगफली 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 करता हुआ मैं अंदर गया। और हर एक को तो नहीं मालूम, शायद इसको ऑथोराइज्ड होगा मूंगफली मूंगफली करते, और जाके अपना वो रखा कुर्सी के नीचे, सबसे पहले विराजमान मैच देख कर आ गया। तो मानो मैं किसी एक एग्जाम्पल एक दे रही हूं, लेकिन हम अपने आप से देखें, हमको सचमुच इतनी इच्छा है कि बस बाबा तेरा ही अनुभव हो जाए। ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी तो नहीं है, चलने दो, जो आप कर सकते हो अच्छा करने के लिए कर लीजिए, लेकिन ये इच्छा रखा हुआ कि अच्छा नहीं अच्छा होना चाहिए, आपको अच्छे से अच्छे अनुभव से वंचित कर देगा। अटेंशन देना है, क्योंकि ये सर्वोच्च अनुभव मुझे कहीं और से नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि संतुष्टता, हर बात में संतुष्टता, जो हुआ सो ठीक हुआ, जो होगा वो अच्छा ही होगा। संतुष्टता की शक्ति है मेरे पास। कहते संतुष्टता कैसे होगी, अब मान लीजिए एक डॉक्टर ने किसी की टांग टूट गई थी, उसकी जोड़ी लेकिन टेढ़ी जुड़ गई। अब हम संतुष्ट रहे कि टेढ़ी जुड़ गई, ठीक है अब जुड़ गई, अच्छा अब क्या करोगे? कहते सीधी जुड़े, तब तो हम कहेंगे ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा अच्छा ड्रामा है। लेकिन टेढ़ी जुड़ी तो कैसे कहे ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा अच्छा है, मुख से ही नहीं निकलता। बाबा तो कहे ड्रामा तो एक्यूरेट है, तेरे को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ड्रामा तो बड़ा एक्यूरेट है। बाबा ने आज भी कहा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे जो बाबा के घर आते थे, बाबा की सेवा में सहयोगी बने, कितने वर्ष ज्ञान में चले, लेकिन किसी के सुनावे बहकावे से वो बच्चे चले गए। लेकिन जब बाबा कहते थे, साकार में हमने देखा, बाबा के चेहरे की रौनक देखो आप, बाबा वैसे ही खिला हुआ आए और ड्रामा का ये भी एक दृश्य देखा, चला गया बच्चा। और हम क्या कहेंगे, ड्रामा में होना ही था, हो गया, आप क्या करेंगे। बड़ी मजबूरी से, जैसे कहते ना, छोटा बच्चा जब खिंच जाता है माँ बाप से किसी बात से, तो माँ बाप को तो छड़ी नहीं मार सकता, अपनी छड़ी लेके तकिए को खूब पीटता जोर जोर से, वो समझता है चलो कहीं तो गुस्सा निकल गया। ऐसे हम भी जब संतुष्ट नहीं होते तो कह देते अच्छा ड्रामा ऐसा ही होगा, मेरा भाग्य ऐसा है, ड्रामा में यही लिखा होगा जो हो गया। जरा बोलते हुए पूछो अपने आप से, अंदर क्या बीत रही है, अंदर मनोस्थिति तो परेशान हो रही है। ड्रामा मानो एक्यूरेट, जो हुआ वही होना था, और यही राइट है, यही कल्याणकारी है। ड्रामा कभी गलत नहीं हो सकता, कल्प कल्प की नूंद है, जो हुआ सो होना ही था। और हम जो हमारे अनुकूल होगा तो अब हम कहेंगे ड्रामा बहुत अच्छा है, और जब अनुकूल नहीं हुआ तब ड्रामा कहेंगे। जैसे मैं एक बार सुना रही थी कि कोई गिर गया और उसका एक दांत आगे के दो दांत टूट गए, अब वो कहेगा ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, कहेगा कल्याणकारी पता नहीं कहां से है ड्रामा, क्योंकि जब भी वो हंसेगा दो टूटे हुए दांत दिखाई देंगे और बनावटी लगे हुए भी पता चल जाएंगे। सारी चेहरे की ब्यूटी जब तक जिंदा है तब तक सारी चेहरे की ब्यूटी खत्म हो रही, अब ड्रामा कहां से कल्याणकारी। लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा कहते हैं ये सोच ले कि इस ड्रामा से दो ही दांत टूटे, अगर इस गिरने से दो दांत टूटे, अगर गिरने से मेरा शरीर छूट जाता तो मैं आज उस प्रभु का जो ज्ञान लेकर अपने जन्म जन्म की पूंजी को एकत्रित कर जन्म जन्म के लिए अपना भाग्य बना रहा हूं, जिसमें किसी प्रकार की अस्वच्छता, किसी प्रकार की स्वस्थता में कमी, किसी प्रकार के सौंदर्य में कमी नहीं आएगी। ओ प्यारे बाबा, कितना कल्याणकारी ड्रामा है कि तुमने दो दांत तोड़कर भी मुझे अपना बना के रखा। हे प्रभु, तेरे कितने ना गुण गाऊं मैं। सचमुच मनोस्थिति में जो हम कह देते हैं ड्रामा, वो तो ऐसे ही हो गया जैसे बच्चे ने तकिए को पीट लिया, हमने ड्रामा को पीट लिया। अरे ड्रामा ऐसा ही है, मेरा जो भाग्य में है वही तो होना है, अब क्या करें। बोल क्या रहे हैं और देखिए जरा बोलने का लहजा कैसे। तो बाबा कहता है पहले अपने संतुष्टता की शक्ति को तो बढ़ाओ, कोई भी मेरे साथ अनुचित बात नहीं हो रही, जो हुआ वो उचित है, जो होगा वो उचित होगा, वर्तमान मेरे हाथ में है, जो मुझे अच्छे से अच्छा करना है उसके लिए जो प्यारे बाबा की आज्ञा और जो प्रयत्न है वो मुझे पूरा ही करना है, उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूं। लेकिन जो हो गुजरा उसका चिंतन और जो होने वाला है उसके प्रति अभिलाषा बनाए हुए मैं एकमात्र जो मेरी इच्छा है प्रभु तेरा अनुभव हो जाए, मेरी आसन मेरी सीट ही हिल रही है, मेरे पास तो और ही कुछ ना कुछ कामनाएं पूर्ण करने की बातें हैं, मैं प्रभु द्वारा प्राप्तियों को प्राप्त कर तृप्त रहने के लिए कैसे तैयार हूं। तो बाबा हमको कहता है मैं जो कुछ लाया हूं बच्चों के लिए लाया हूं, लेकिन मेरे बच्चे इस संसार के अल्पकाल की प्राप्तियों में अपना समय देकर मुझ दाता की देन को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे जो है जैसे हो संतुष्ट रहो, कभी किसी से अपने को कंपेयर ना करो। हम कभी कभी असंतुष्ट होते हैं क्योंकि हम अपने को औरों से मिलान करते हैं, और मिलान चाहे हम अपने रूप से उनका मिलान करें, चाहे धन से करें, चाहे पोजीशन से करें, चाहे किसी प्रकार के स्टेटस से ऊंचाई नीचाई से करें, कोई ना कोई आपस मुकाबला करते। और बाबा ने हमको कहा हुआ है इस विश्व में तू हीरो एक्टर है, तेरे जैसा सेकंड एक्टर दूसरा एक्टर सारे विश्व में तू टटोल किया, ना तेरी शक्ल जैसा होगा ना एक्यूरेट तेरे कर्म जैसा होगा, तेरा जो पार्ट है वो तेरा ही है, तेरे जैसा दूसरा किसी का नहीं। तो क्यों अपने जीवन को किसी से कंपेयर करके अपने जीवन की असंतुष्टता को बढ़ाता है। तू संतुष्ट रहे, मैं तेरी झोली भरपूर करने के लिए आया हूं। बच्चे तो अपनी स्थिति को जमा के रख, तेरा मन और बुद्धि मेरे में एकाग्र रहेगा। तेरी असंतुष्टता तेरे मन बुद्धि को भटका देती है और फिर तू कहते है अनुभव नहीं हो रहा। जब तेरी बुद्धि का लाइन सुई ऐसे से करेगी तो बता तू मेरे से ले कैसे पाएगी, और जब प्राप्ति नहीं हो पाती है तब तू और निरुत्साहित होता है। बहुत समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, लेकिन जो योग के गहरे अनुभव होने चाहिए इतने हो नहीं पा रहे हैं। जो बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे लाइट का अनुभव करो, माइट का अनुभव होगा तुम्हें जीवन में, सर्व प्राप्तियों से संपूर्ण जीवन का अनुभव होगा, ऐसा कि पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, मेरे पास तो अभी तक ऐसा अनुभव हुआ नहीं है, कोई मुझे बताए ये अनुभव कैसे होगा। तो मैं इस सदन पर शक्ति लेती हूं कल्पना की शक्ति। कल्पना की शक्ति भी हमारे पास बहुत पावरफुल चाहिए। कईयों के पास दुनिया की बातों की कल्पना की शक्ति है, ईश्वरीय ज्ञान की बातों की कल्पना शक्ति नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बड़ा भयंकर विनाश होगा, उससे पूर्व कि तुम अपनी स्थिति देही अभिमानी बना लो, क्योंकि जब कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो दवाई की गोली खा के बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर कोई गहरी बीमारी है जिसका ऑपरेशन करना होता है तो उस समय उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, बेहोश करना पड़ता है, तब वो ऑपरेशन हो सकता है। मैं बार बार तुम्हें बताता हूं कि बड़ा दर्दनाक सीन आने वाला है। अभी छोटी मोटी घटनाओं में तो ज्ञान की गोली ही तेरे को काफी है, लेकिन ऐसे दर्दनाक सीन को देखने के लिए तुझे एनेस्थीसिया लेना पड़ेगा, अर्थात देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास बहुत लंबे काल का बनाया हुआ होगा, तो उस समय तो ऐसा दृश्य देख पाएगा। नहीं तो दृश्य का नाम सुनते तो पहले ही शरीर छोड़ देगा और तेरी अंतमते क्या होगी, वो दृश्य का चिंतन तेरी अंतमते होगी और तेरी गति क्या होगी तो स्वयं सोच सकता है। अब हम अपने आप से पूछें कि बाबा ने हमको बता दिया कि अंतकाल ऐसा भयानक दृश्य होगा, मेरे सामने वो भयानक दृश्य की एक चित्र चित्रित होता है, कभी वो चित्र आया कैसा होगा, ताकि मैं उस आने वाले ऐसे भयानक दृश्य से पूर्व अपने को बचाने का प्रयत्न कर सकूं। वास्तव में देखा जाए बहुतों के पास कल्पना शक्ति की बड़ी कमी होती है, इसको कहते हैं इमेजिनेशन पावर। कई कहते हैं अरे ख्वाबी पुलाव बनाते हो, इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, इमेज, किसी चीज का चित्र चित्रण हो जाए, इमेज सामने आ जाए। जब किसी चीज का इमेज आ जाता है उसको कितना क्लियर होता है। एक आर्टिस्ट है, वो हमारे साथ किसी बगीचे में गया, हम भी गए, लेकिन वो घर आने पर मुझे उस बगीचे का इतना सुंदर वो नक्शा बना के उसने, वैसे फूल खिले, कहां से बगीचा मुड़ा है, कहां कौन सी क्यारी है, बड़ा सुंदर एक नक्शा बना के इतना सुंदर सा दे दिया। अब मुझे तो ख्याल नहीं कि यहां ये गमला पड़ा था, यहां ये बेल थी, कहते चलो चल के देख लो, ये बेल यहां ऐसे पत्तों वाली थी और यहां ऐसे फूल थे। अब देखा बगीचा मैंने भी है, देखा उन्होंने भी है, लेकिन उसके सामने एक तो उसके पास आर्ट है और दूसरा आर्ट के अलावा मैं उस बगीचे को देखकर आने के बावजूद भी पहचान नहीं पा रही, लगता है वही बगीचा लेकिन ये कोने कोने की इन्होंने चित्र बनाया, ये मुझे ख्याल में नहीं है। और रियली मैं उस चित्र को ले जाकर जब देखती हूं तो छोटे छोटे कोने का भी उसने चित्र प्रॉपर निकाला हुआ है, उसकी इमेजिनेशन पावर ऐसी है कि उसको बगीचा आंखों से हट जाने पर भी वो इमेज, वो चित्र, कल्पना चित्र इतना क्लियर है कि वो चित्र बना डालता है। एक दूसरा उदाहरण, एक आर्किटेक्ट है जो मकान के नक्शे बनाते हैं, वो हमको नक्शा बना के देता है और कहता है मैंने जो आज आपका नक्शा बनाया आपका मकान इतना सुंदर लगेगा, मैं नहीं समझता कि लोग आके इस मकान को नहीं देखेंगे और देखकर अपना नक्शा ऐसा ही ना बनाना चाहे, ऐसा नहीं होगा, इतना सुंदर मकान, अभी मकान नहीं बना, खाली मकान का नक्शा उसने कैनवस पर बना दिया और वो पहले कहां बना उसके दिमाग में कि कैसा ये मुझे जरूरत की चीजें कह रहे हैं, कैसी ब्यूटी उसमें कह रहे हैं, वो हमारी सारी बात सुन के उसने एक नक्शा बना दिया और इतना सुंदर नक्शा जो सचमुच जब मकान बना तो सब लोग कहते बड़ा भी कमाल का आर्किटेक्ट है आपका, एक इंची जगह वेस्ट नहीं गई और सब जगह जरूरत की कैसे उसने ऑक्यूपाई किए। तो ये एक कल्पना होती, हम अपने आप से पूछें, हमको बाबा कहता है कि बच्चे तू ज्योति बिंदु आत्मा है और चमकता हुआ जैसे तू आकाश में सितारा देखता है, ऐसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म तो एक दिव्य पॉइंट लाइट है और इन पांचों तत्वों से परे जहां सूर्य चंद्र तारागण कोई प्रकाश नहीं है, वो इन बिल्कुल इन सब से परे एक छटा वो प्रकाश का तत्व है जहां पर सुनहरी सुनहरी लाल लाल लाइट ही लाइट है। ये भगवानों वाच्य हम बच्चों को हमारे स्वरूप की पहचान देते हुए हमें हमारे घर का नक्शा दिखाते हैं और फिर हमको क्या कहते हैं कि जैसे तू ज्योति बिंदु है ऐसे मैं भी चमकता हुआ दिव्य प्रकाश और निरंतर रूप से जो मेरे से शक्तियां निकलती हैं वो किरणें नहीं वो सर्व शक्तियां हैं जो कभी भी बच्चा आत्मा सामने आएगी तो उन शक्तियों से भरपूर होकर ही रहेगी। सूर्य के सामने जाएंगे तो सूर्य की हीट या सूर्य का प्रकाश जो भी सूर्य की विशेषताएं हैं उसका उस समय वो प्राणी अनुभव करता है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि तू अपने सामने जरा कल्पना चित्र तो ला, तुझे तेरा स्वरूप क्लियर दिखाई दे रहा है तो दुनिया की बहुत चीजें क्लियर देखता है और सब चीजें तेरी आंखों से देखी हुई नहीं होती, कई बार देखी हुई किसी और की है लेकिन देखने वाला इस कदर आपके सामने उस चीज का नक्शा खींचता है कि जैसे वो आपको दिखाई देता है कि वो ऐसा है। बाबा भी हम बच्चों को वास्तव में देखा जाए जो ज्ञान सुना रहा है वो बड़ा क्लियर पिक्चर साथ देता है, क्योंकि जब हम बाबा को देखते हैं तो बाबा ना दिखाई देके हमारा ध्यान कहीं और जाता है, इसका मतलब उस चित्र पर क्लियर पिक्चर नहीं आ रही, हम किसी और पिक्चर को देखने लगते हैं। आप चेक करके देखना, अगर आपको अपना कल्पना चित्र क्लियर है, इमेज है ना, ये मेरा एक चित्र है जो मुझे मेरे बाबा ने बता दिया तो ऐसा है, देखो जरा बैठ के रियली मैं चमकता हुआ बहुत ब्रिलियंट वाइट लाइट बहुत शांत बहुत शुद्ध और पवित्र ऐसी दिव्य आत्मा हूं। अपने आप से पूछो, जो ही आप स्वयं का चिंतन करते हो आपको अपना स्वरूप इतना क्लियर दिखाई देता है और जो ही बाबा का चित्रण करते हो बाबा का क्लियर पिक्चर सामने आता है। अगर क्लियर स्वयं को आप देख रहे हो और स्पष्ट बाबा को भी आप देख रहे हो तो मैं नहीं समझती हूं ऐसी सुंदर ऐसी आकर्षक ऐसी दिव्य मूर्त अगर आपके सामने आ जाए तो कोई अन्य चित्र उससे कंपैरिजन में हो ही नहीं सकता, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा ही नहीं। लेकिन आपका ध्यान इधर उधर जाता है क्योंकि आपके सामने आपका अपना और बाप का चित्र पूर्ण रूपेण क्लियर नहीं होता है। हाँ बाबा बार बार बताता है, कई बार बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता रूप क्या है, ये हार्ड मास का चोला है ना, ये हार्ड मास नहीं ये एक लाइट ही लाइट है।
एक सेकंड, दोनों कन्नड़ भाषा वालों को ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है, एक सेकंड अनाउंस करो भैया। अब तो एक एक माता आ रही है पीछे से।
वे कन्नड़ भाषा वालों को ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा, अगर कोई ट्रांसलेशन जानता है तो कन्नड़ भाषा वाला ऊपर चला जाए तो वो ट्रांसलेशन कर दे। कोई बीजापुर से आया हुआ है तो कृपया स्वयं ही सुनने में ना मस्त हो जाए, वो जिनको लाए हैं उनकी सेवा का भी थोड़ा ख्याल जरूर रख दे। अब इसके बाद कहने नहीं आना लेकिन हमने अनाउंस कर दिया, कोई सेवा में जाएगा तो आप देख लेंगे। कोई जा रहा है तो हाथ खड़ा करे, कोई जा रहा है कन्नड़ भाषा वाला, यहाँ कोई इंटरप्रेट करने वाला शायद बैठा नहीं। अच्छा अच्छा, अभी एक बहन जा रही है, जब तक पहुंचे तब तक आप सुनते जाइए, जो कर सकता है वो चला जाए, स्वयं चला जाए। अच्छा अभी मैं आपको क्या सुना रही थी, मैं आपको सुना रही थी कि हम में कल्पना शक्ति भी जब तक नहीं अच्छे रूप से आएगी तब तक हम ईश्वरीय गहन अनुभव नहीं कर सकते। गहरा अनुभव करने के लिए ये शक्तियां पहले हम में होनी बहुत जरूरी हैं, नहीं तो हमारा तांता उनसे बनता नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा कहते जी, कभी कभी थोड़ा सा अनुभव होता है या कभी कभी होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। कारण क्या है, जितनी शक्ति है उतना अनुभव होता है, और ये शक्तियां बढ़ाने की बहुत जरूरत है। बाबा ने हम बच्चों को कहा वो धाम कैसा है, बच्चे आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप कैसा, तो यहां तक जैसे बाबा ने कहा सूर्य, तो हम सूर्य का नाम सुनते ही हमारे सामने सूर्य आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा शुद्ध पवित्र, आप सोचिए जब वर्षा होती है, बड़ी तेज वर्षा हुई, और वर्षा के बाद जितनी गैसेस होती हैं वो सब वर्षा के पानी से डिसॉल्व हो जाती, मानो सब पिघल गई। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं, कण होते हैं, जो हवा में मिक्स होते हैं, वो सभी समाप्त हो गए। तो आप जरा सूर्य को उस समय देखो, जब आप सूर्य को उस समय देखेंगे जब ना तो कोई ऐसी गैसेस हैं जो उसको थोड़ी चमक को ढकने वाली हो, और ना इस प्रकार के कोई पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में हैं जो उसकी शोभा को बिखारने या खराब करने वाले हों। ऐसे समय आप सूर्य को जरा देखो, आपको कैसा दिखाई देगा, चमकता हुआ सूर्य है, लेकिन चारों तरफ उसके जैसे प्रकाश प्रकाश, गोल्डन 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 प्रकाश ही प्रकाश है। कितना सुंदर उस समय लगता है, सब कहते देखो आज सूर्य कितना सुंदर लग रहा है, या चंद्र कभी ऐसा हो तो चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है। तो हम अपने सामने जो बाबा ने हमको बताया कि बच्चे तेरा स्वरूप ऐसा है जो बिल्कुल निर्मल है, अर्थात किसी गैस से ढका हुआ या किसी पार्टिकल से इस प्रकार से उसके रूप में कोई उसकी चमक में कोई कमी आने वाला ऐसा नहीं। तो मानो लाइट है, लेकिन लाइट भी लाइट के कार्ब में है, मैं पॉइंट लाइट हूं लेकिन चारों तरफ मेरे भी लाइट ही लाइट है, लाइट के मध्य मैं वो लाइट हूं। और बाबा को भी मैं ऐसे ही देख रही हूं, वो भी पॉइंट लाइट है लेकिन चारों तरफ उसके भी लाइट ही लाइट है, उसके मध्य वो प्यारे बाबा जो सरल शक्तियों की जो किरणें हैं, कितनी क्लियर कितनी प्योर वो किरणें शक्तियों के रूप में बिखेर रहा है। और आत्मा सामने बैठी, कई बार आपने वो चित्र देखा होगा कि एक बहन बैठी है और सामने से शिव बाबा की शक्ति आ रही है, तो बहन का बॉडी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन बॉडी में जैसे लाइट 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 हो गई, और वो लाइट लाइट चारों तरफ उससे बिखर बिखर के चारों तरफ जा रही है। तो हम अपने सामने एज्यूम करें, कई बार कईयों को ऐसा कहते हैं ये तो हमारी कल्पना हो गई। विज्ञान के जितने भी आज इन्वेंशन हुए हैं, दुनिया ने कितनी भी रिसर्च की है, वो इमेजिनेशन से की, उनके सामने पहले वो चीज इमेज उसका आया, चित्र आया, फिर उसको उस चित्र को प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना है वो करने लग गए। और हमने कोई अपने मनगढ़ंत तो नहीं सोचा कि आत्मा ज्योति है या बाबा ज्योति है, हमने तो दाता ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान ने मुझे मेरी पहचान स्वयं दी है। तो वो जो पहचान देगा वो तो सत्य ही देगा। अपनी पहचान भी उन्होंने स्वयं दी है कि मैं सूर्य के प्रकाश के लाइट के धाम में नहीं हूं, चंद्रमा का प्रकाश वहां नहीं है, लेकिन वो सेल्फ इल्यूमिनस, वो एक प्रकाश ही वतन है। बच्चे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और सुनहरा सुनहरा लाल प्रकाश है, चारों तरफ शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता है। ऐसे पवित्र धाम में तू मेरा बच्चा मेरे सन्मुख आकर बैठ जा, क्योंकि यहां देह के जगत में तुझे देह के प्राणियों के वाइब्रेशन भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो स्वयं भी देह से न्यारा हो, मुझ विदेही के सन्मुख मेरे वतन में आकर बैठ जा। मैं तुझे अपनी शक्तियों के स्वयं अनुभव कराऊंगा। और कई बार कईयों को ये इमेज सामने लाना नहीं आता, ये चित्र सामने उनके आता नहीं, आएगा सेकंड फिर खत्म, सेकंड फिर खत्म करके देखना, ये हर एक के नहीं आएगा। जबकि मुझे मालूम है कि मेरा रूप ज्योति बिंदु है, लेकिन वो सारा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे मन बुद्धि में बहुत से चित्र छपे पड़े हैं, और वो चित्र जब तक सब निकलते ना जाएंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तब तक एक बाबा की स्मृति में कायम नहीं रह सकते। और जो हम बाबा का अनुभव करना चाहें, वो एक एकाग्र हो जाए मन, तभी वो अनुभव हो सकता है। कोई भी ध्यान कहते जी ध्यान चला गया, ध्यान का मतलब क्या है? योग को भी तो ध्यान कहते हैं, ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो ध्यान कहां जाएगा? एक की तरफ ही तो जाएगा। तो जब बाबा की याद में अब कई मानो चित्र नहीं आता, क्योंकि कई चित्र हमारे मन में बैठे हुए हैं, उसने मुझे ऐसा कहा, फलां ने मेरे से ऐसा किया, पता नहीं ये बात कब ठीक होनी है, बाबा जल्दी ठीक कर दे, उम्मीद तो है हो जाए तो अच्छी बात है, बाबा तेरा ही तो सहारा है, कई बातें हम मन में लगा के रख के बैठे हुए, और फिर हम कहते हैं हमको बताओ ईश्वर का अनुभव कैसे हो। बाबा कहते हैं या तो रहेंगी बातें, या रखो बात, या रखो बाप। अगर बाप रखना है तो बातों से मुक्त हो जाओ, बातें बहुत आएंगी, ऐसी बातें आएंगी जो सचमुच सोचकर हृदय कांप उठेगा। लेकिन वो बाबा जो सर्वशक्तियों का दाता, मुझे मदद देने के लिए, बल देने के लिए, सहारा और सहायक बनने के लिए आया हुआ है, मुझे केवल उस एक को अब अपना सहारा पकड़ना है। दुनिया में और कोई सहारा आज की असंभव परिस्थितियों में हो ही नहीं सकता, ये मन ठान ले, मन में ये दृढ़ विश्वास आ जाए। ये विश्वास पूरा नहीं आता है, कहते जरूर है हमको निश्चय है बाबा का, निश्चय होना सहज काम नहीं है। बाबा ने कहा था जहां निश्चय होगा वहां निश्चिंत होंगे, वहां हर क्षण ये रहेगा जो हुआ सो निश्चित है, जो होगा वो निश्चित है, चिंता कोई बात नहीं, वो निश्चय की निशानी है। कहां है वो निश्चिंत स्थिति हम सब की आज समय? कहां है ये धारणा कि जो हुआ वो निश्चित था, जो होगा वो निश्चित है, जो करना है वो करना है, बाकी बात बुद्धि में कुछ और है ही नहीं? ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए, ये हमारा आसन है, ये हमारा सिंहासन। गीता हम पढ़ते थे, पहले उसे बताया हे अर्जुन तेरी स्थिति कैसे चाहिए, स्थान कैसा चाहिए। हम समझते थे धरती के लिए कहते, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, अब पता चला स्थान का मतलब स्थिति से, हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो अभी मैं समझती हूँ बाबा का कुछ अनुभव करना चाहेंगे। वैसे तो 7 बजे अपने आदरणीय दादियां भी आएंगे, लेकिन उससे पूर्व जो आपने सुना वो मुझे भी काम मिला हुआ है कि मैं थोड़ी देर उस स्थिति में आप सबको बिठाऊं। बाकी इतना लास्ट कहना चाहूंगी कि समझो आपके सामने जो बाबा ने चित्र हम मेरा अपना और अपने घर का दिया, अगर वो कल्पना चित्र मेरे सामने नहीं रहता तो मुझे उसके लिए कोई दान, कोई पुण्य, कोई शरीर से कुछ करते रहना चाहिए। किसी को फोन करके प्यारे बाबा का ज्ञान धन दान कर दो, किसी को अपने जीवन में गुणों को संजोकर किसी को गुणों का दान कर दो, कभी फ्री बैठे हो तो बाबा से शक्तियां लेके विश्व की आत्माओं को शक्तियों का योगदान दे दो। गायन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसी प्रकार का स्थिति में अगर ग्रहण आ गया जो बाबा के बताने के बावजूद भी वो चित्र मेरे सामने पूरा क्लियर नहीं रहता, तो वो कुछ ना कुछ हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमारी स्थिति में ग्रहण लग जाता है और हम उसको जानते हुए समझते हुए भी देख नहीं पाते। तो अभी हम सब थोड़ी देर के लिए प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे मैं आपको थोड़े थोड़े शब्दों में बताती जाऊंगी, आप कोशिश करते जाना साथ साथ, जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा स्वयं को समझने की और स्वयं को अपने इमेज को, अपने कल्पना चित्र को अपने सामने लाने की। मैं आत्मा ब्रकुटी के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा, मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और प्रकाश के मध्य ब्रकुटी के बीच चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा आत्मा विराजमान। कितना उज्जवल मेरा स्वरूप है, कितना पावन मेरा रूप है। कितनी न्यारी और प्यारी मेरी आकृति है, बाहरे मैं अति पवित्र अति शुद्ध अति शांत मैं अनादि स्वरूप चमकता हुआ दिव्य रूप आत्मा मैं आत्मा देह के बंधन से मुक्त स्वतंत्र जब चाहूं इसमें आऊं, जब चाहूं इससे अलग हट जाऊं, मैं आतुर हूं, व्याकुल हूं अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मैं इस भ्रकुटी के आसन से उठकर जा रही हूं। इन पांचों तत्वों से परे प्रकाश ही प्रकाशमय ज्योति तत्व में, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, यही तो वो धाम है जहां मेरे प्रिय प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप सर्व गुणों के सिंधु मेरे प्यारे बाबा सर्व शक्तियों की भुजाओं से मुझ आत्मा को अपने स्वरूप में समा लेते हैं। कभी जुदा नहीं होंगे, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता, मेरे प्यारे पिता मैं आपके स्वरूप में समा जाऊं, कभी आपसे जुदा ना हो। ऐसे प्यारे बाबा के प्यार में मैं आत्मा इस अनुभव को सदा कायम रखती हुई ज्योति देश में, जो मेरा ही तो असली घर है, यही तो मेरा पावन निर्मल स्वरूप है। प्यारे बाबा, अब मैं आपसे कभी नहीं बिछड़ूंगी। आपके इस मोहिनी स्वरूप में समाई रहूंगी। प्यारे बाबा, कितना प्यारा मेरा वतन, कितने प्यार का सागर मेरा प्यारा पिता, ऐसा सुंदर अनुभव मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी बाबा, मैं स्वयं को भरपूरता का अनुभव कर रही हूं। प्यारे बाबा, आपके प्यार के झूले में मैं झूल रही हूं। क्या आनंद है मेरे प्यारे बाबा, आपकी इन प्राप्तियों और इस महान मिलन में। कुछ नहीं बोलने का मन, इस मिलन के अनुभव में समा जाओ, समा जाओ। कितना प्यारा है मेरा घर, कितना अनोखा है मेरे प्यारे बाबा का ये मिलन। प्यार का सागर, सर्व शक्तियों का भंडार, सर्व शक्तिवान मेरे अपने ही तो मेरे बाबा हैं। बाबा, मैंने स्वयं को पहचान लिया, आपको जान लिया, अपने घर आने की युक्ति को जान लिया। अब बाबा कभी आपसे जुदा नहीं रहूंगी, ये मिलन सदा कायम रहेगा। बाबा आपकी ही थी, आपकी ही हूं, आपकी ही रहूंगी। ओ मेरे प्यारे बाबा, सभी ऐसे प्यारे बाबा में समा जाओ। दाता विशाल है, सभी को अपने में समाने का निमंत्रण दे रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, आओ मेरी शक्तियों की भुजाओं में समा जाओ।